अथ समीक्षणाद् विषाददर्शनात् मुक्तिजिज्ञासाम् आत्मज्ञानात् साम् तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम् आक्षरं ब्रह्म आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः तस्य सृष्ट्यादिकं मायया विभूतिषु तस्य अनुसन्धानम् भक्तिदार्ढ्याय। यहां पर भी ढ पूरा छप गया, ढ और या मिलकर के संयुक्त अक्षर होगा। भक्ति दार्ढ्याय ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् कर्म भक्ति ध्यानयोग परंपरया अनन्या भक्तिः आत्मा ब्रह्म इति ज्ञानं भक्तेः फलम् तेन गुणातीतः ब्रह्मभावः सा उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् क्षराक्षरा एक आकार रख के आगे वहां भी लगेगा। क्षर अक्षर अतीतत्वात् सा उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् तदर्थं दैवी संपद आदेया आसुरी च हेया। तदर्थम यहां ऊपर बिंदी लगेगी। सात्विक्या श्रद्धया तद्भवति एवं कर्मणा सर्वकर्म संन्यासेन वा ईश्वर शरणेन मुक्तिः सिद्ध्यति इति गीतासूत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम् तत्सत्। हरि ओम् तत्सत्। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ध्यानयोगेन सा ध्यान योगेन साम ध्यान योगेन साम ध्यान योग के द्वारा वो आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है सा जिससे आपके सब प्रकार के विषाद सदा के लिए मिट जाता है, मुक्ति फलित होती है। तो वो आत्मज्ञान निष्ठा का रूप क्या है जो ध्यान योग से पाया जाता है, उसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आत्मज्ञान की निष्ठा और आत्मज्ञान एक ही चीज है असल में। आत्म साक्षात्कार, आत्मा ब्रह्म है, इस रूप में साक्षात्कार करने का ही नाम है ज्ञान। और वही असल में ज्ञान निष्ठा है, परंतु फिर भी निष्ठा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब हम लोग श्रवण करते हैं तो कुछ प्रतिबंधक निवृत्ति हो जाने से, संशय मिट जाने से ऐसा लगता है कि हम तो आत्मज्ञान हमको प्राप्त हो गया, लेकिन परोक्ष है। असल में जिसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसको इस प्रकार की भ्रांति नहीं होती है। आत्मा नित्य अपरोक्ष स्वरूप है, उसका परोक्षता क्या होगी। फिर भी ये परोक्ष रूप से भाषित होने वाले ज्ञान की बड़ी महिमा है महाराज। जैसे सूर्योदय से पहले लालिमा छाती है ना, अब लालिमा छा गई माने सूर्य का उदय तो होना ही है, लेकिन सूर्योदय हुआ नहीं है। तो सूर्य का उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंधकार थोड़ा पतला हो गया, इसी को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और उससे अज्ञान की सर्वथा, अज्ञान का सर्वथा निवृत्त करने वाला जो आत्मज्ञान है उसको भिन्न रूप से समझाने के लिए निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आत्मज्ञान निष्ठा का अर्थ हुआ ब्रह्म साक्षात्कार, जो कि अज्ञान को सदा के लिए समाप्त कर दे। अज्ञान निवर्तक आत्मज्ञान का ही नाम है आत्मज्ञान निष्ठा। वैसे निष्ठा शब्द से प्रायः यह माना जाता है कि आत्मज्ञान जो आपको हुआ उसकी बार बार आवृत्ति करो, आवर्तन करो, इसी को ध्यान भी कह सकते हैं, निधिध्यासन भी कह सकते हैं। तो बारंबार जब आप आवृत्ति करते हैं तो जो विपरीत भावना आदि प्रतिबंधक अभी भी चित्त में बैठे हैं उसकी निवृत्ति हो जाती है, और फिर वो आवर्तन से मन जब बिल्कुल प्रतिबंध रहित हो गया तब वो साक्षात्कार उत्पन्न होता है जो उठकर के समस्त अज्ञान को सदा के लिए मिटा दिया। तो तात्पर्य यह है कि हमने आत्मज्ञान निष्ठा शब्द प्रयोग किया, संन्यास ज्ञान निष्ठार्थम, तो वो अज्ञान निवर्तक जो ज्ञान है उसी के लिए किया है निष्ठा। भगवान ने भी निष्ठा शब्द का प्रयोग किया आगे चल करके, यही परोक्ष और अपरोक्ष की जो भेद है उसको समझाने के लिए। 18वें अध्याय में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्यया परा, पहले भी बताया लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा न ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगेन, तो निष्ठा शब्द गीता में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसका रहस्य यही है। आत्मज्ञान एक बार अगर हो गया तो बारंबार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार होने से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। रस्सी को आपने देख लिया भली भांति कि रस्सी है सांप नहीं है, अब आपको जपने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने देखा, हाँ लगता तो है, उन्होंने भी बताया कि ये सांप नहीं है, लेकिन ये जो लेकिन जब तक है तब तक उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। तो वो जो है ये ध्यान आदि की प्रक्रिया उसी के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, तो आत्मज्ञान का या आत्मज्ञान निष्ठा का रूप क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। 29वें श्लोक 6 अध्याय का और गीता जी स्वयं उपनिषद हैं और समस्त उपनिषदों का सार भी है, इसलिए प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है ना श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषद हैं और सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन, समस्त उपनिषद रूपी गायों को दुह करके उन्होंने ये गीतामृत रूप दुग्ध को हम लोगों के लिए दिया। तो इस श्लोक से और इस प्रकार के श्लोकों से सीधे उपनिषद के साथ जो इनके कनेक्शन है, क्यों इसको समस्त उपनिषदों का सार बताया गया, ये आपको जो उपनिषद के अभ्यास करने वाले हो, आप लोग तो स्वाध्यायी हो तो ये पता लगता है। एक बार इस श्लोक को और उच्चारण कर लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब के भीतर अपने आप को देखता है, आत्मा को देखता है और सब को अपने में देखता है। अपने आत्मसत्ता से भिन्न और किसी को नहीं देखता, सब को अपनी आत्मसत्ता के ही रूप, अपना ही रूप जानते हैं, अनुभव करते हैं, ईक्षते। इसी को सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र वो समदर्शन करता है। सम शब्द का अर्थ हुआ निर्विशेषम। विषमता कहां से आती है, उस विशिष्टता से। भिन्नता कुछ होगी, भैया ये जो हैं लाल हैं और ये पीला और हरा है, तो विशेष हो गया। तो जो भेद हैं उसी को विशेष कहा जाता है, उसी से विषम होता है। और सम कब होगा? जब विषमता नहीं होगी, भिन्नता नहीं होगी, तो निर्विशेष निर्विशेष हो जाएगा। दृष्टांत से समझ लीजिए, गले का हार है, कान का कुंडल है, हाथ का कंगन है, ये सब जो हैं कंगन हार कुंडल विशेष है। अब मूर्ति बना लो सोने का, तो गणेश जी सोने के हैं और सोने के ही चूहे हैं, ये सब विषम हैं। किस में विषमता है? आकार में। और समता क्या है? सोना है। तो जिनकी बुद्धि आकार से हट गई, आकार में अटकी नहीं, जो उस तत्व को देख रहा है, ये सारे जगत में हमको सब विषम विषम, भिन्न भिन्न, मैं अलग आप अलग, ये सारा सब कुछ अलग अलग दिखता है। तो इसीलिए हम लोग विषमदर्शी हैं, समदर्शी नहीं है, क्योंकि समता दिखाई नहीं पड़ रही है ना। तो निर्विशेष को, सब विशेषों में जो अनुगत हैं, सब के भीतर जो विद्यमान एक तत्व हैं, उस एक ब्रह्म तत्व को निर्विशेषम ब्रह्मात्मैकत्व विषयम, उसको जो देखता है, अच्छा उसको देखता है, तो क्या वो देखने वाला अलग और वो जिसको देख रहा है वो अलग, ऐसा दिखता है? अगर ऐसा दिखेगा तो फिर विषमता आई ना, भिन्नता आई कि नहीं? क्योंकि अपने आप को अलग करने के लिए उस ब्रह्म तत्व से आपको कुछ और अलग चीज ओढ़ना पड़ेगा, विशेषता। तो ऐसा दर्शन ब्रह्म दर्शन नहीं है। ब्रह्म को देखना और ब्रह्म होना एक ही बात है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, वो ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति नहीं है, असल में प्रायः ऐसा बोला जाता है, वो श्रुति है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, उसी को कह दिया जाता है कि ब्रह्मविद। तो ब्रह्म को जाना, वेद माने जाना, वो क्रियापद है, ब्रह्म को जाना और ब्रह्म हो गया, ऐसा। तो इसीलिए तो अपने आप को सबसे अभिन्न जानता है। ये जो अभेद दर्शन है, यही आत्मज्ञान निष्ठा है, और भेद दर्शन ये अज्ञान का ही रूप है। जब तक भेद दर्शन है तब तक हम लोगों में अज्ञान विद्यमान है, क्योंकि वास्तविकता असल में भेद नहीं है और हमको दिख रहा है। तो कल मैंने कहा था कि ये जो ब्रह्म सत्ता है, अनंत सत्ता है, जो हमारी वास्तविक आत्मस्वरूप है, उससे हम कट गए। और काटा किसने? कोई वास्तविक काट तो नहीं सकते नहीं है, अज्ञान ने, भ्रांति ने। उस अज्ञान का ही एक रूप हैं और मुख्य रूप ही समझ लो मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, इन सब से अलग एक मैं हूं। ये जो मैं अहंता, अभी आपने ब्रह्मास्मि ब्रह्मनामावली पढ़ा ना, तो उसमें यही श्लोक आया, अहंता रूप जो चोर है ये चोर गया। अब देखो ये अहंता और ममता ये दोनों बात आई, तो अहंता से ममता निकलती है। अहंता कितना बड़ा चोर है आपको पता है, ये जो अहम है, है? अरे महाराज कहा कि किं तेन न कृतं पापं चोरेणा आत्म अपहारिणा, उसने क्या पाप नहीं कर लिया जिसने आत्मा को ही चुरा लिया। माने आपके सामान चुरा ले वो तो समझ में आता है, और आप ही को चुरा ले, आपकी सत्ता को ही चुरा ले, तो ये चुराने वाला कौन है पता है, जिसको आप सबसे खास मित्र समझते हो ये मैं है ना, ये ही सबसे बड़ा चोर है महाराज। सुनते हैं कि एक महात्मा के पास एक ही संपत्ति थी, उनकी एक घोड़ा था। तो एक दिन सुबह उठा, देखा कि घोड़ा जो है वो कोई चोरी करके ले गया। अब गांव वाले को सबको बुलाया, बोला आज भंडारा है महाराज, महाराज किस खुशी में आज भंडारा है, अरे कहो नहीं मैं बच गया। और क्या हुआ, बोले घोड़ा चोरी हो गया। अरे महाराज इतनी कीमती, बड़ी कीमती घोड़े थी, माने घोड़े का वो उनको किसी राजा ने भक्त ने दिया था। कहा कि घोड़ा इतना कीमती घोड़ा चोरी हो गया और आप भंडारा कर रहे हो। अरे घोड़ा गया, अगर मैं उस पर बैठा होता तो मैं भी चला जाता है? तो कम से कम घोड़ा ही गया, मैं तो बचा। कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग सब घोड़े पर बैठे हैं ना, तो हमारी घोड़े भी जाती है और हम भी तो इसलिए घोड़ों के ऊपर बैठना छोड़ दो महाराज। माने ये जो देह इंद्रिय आदि उपाधि है ना, नाम रूप, इस पर जब तक हम अध्यास करके बैठे हैं तब तक इनके साथ साथ हमारी भी चोरी हो जाएगी, हो गई। तो ये अहम जो एक बोध कहो, एक भ्रांति कहो, हम पाल रहे हैं, इसने बड़ा भारी नुकसान कर दिया। क्या कर दिया, हम जो अनंत सत्ता है, सारा विश्व मेरा अपना आत्मस्वरूप है, उस स्वरूप को हमसे अलग करके छोटा करके हमको काट दिया, छोटा बना दिया। तो इसलिए आप अपने आप को दूसरों से कहना गलत है, अपने आप से अलग समझते हैं, आत्मा से ब्रह्म से अलग समझते हैं। और ये जो सेपरेशन है, इसका बड़ा दुख जाने अनजाने में हम लोग भोगते रहते हैं, बड़ी वेदना है। जैसे आपके सबसे प्रिय व्यक्ति से, प्रियतम से आपको अलग करते हैं, आपको कितना कष्ट होता है, इसी प्रकार। और ये आत्मा माने अहं के घेरे के भीतर जो फंसा हुआ है, कि आत्मा निरंतर तड़पती रहती है अपने ही आप से मिलने का, उस अनंत सत्ता से मिलने का। और जब तक वो मिल नहीं पाते तब तक उसको चैन नहीं मिलती है। चाहे कितने भी चीजें आप प्राप्त कर लो, कुछ दिन आपका मन बहलाएगा, फिर भीतर 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 दुखी होते रहेंगे, और सब के भीतर एक दुख एक गम हमारे भीतर है। और वो कभी कभी हमारे जो है, चाहे धन के कारण हम रो लेते हैं, पुत्र के कारण रो लेते हैं, पति के कारण रो लेते हैं पत्नी के, लेकिन असल में वास्तविक जो हमारा दुख है वो तो किसी ने समझा ही नहीं, हमने भी नहीं समझा कि क्यों हम इतना दुखी और उदास रहते हैं। और महाराज इसी जो तथ्य हैं, इसी तथ्य से शुरू होती हैं ये भगवान कृष्ण के लिए राधा रानी जी का, गोपियों का रोना। वो श्री कृष्ण कौन है? वो ब्रह्मा, और उनसे बिछुड़े हुए ये सब आत्माएं हैं। अब उनको मिलना है, और जब आपको वास्तविक समझ में आ जाते हैं कि मैं असल में किसके लिए तड़प रहा हूं, तभी आप गोपियां बन जाती हैं और अंततः मिलन होता है। तो ये अद्वैतम एक अखंड आत्मसत्ता की अनुभूति दर्शन तो आपके सारे सेपरेशन को समाप्त कर देते हैं सदा के लिए। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं कि सर्वत्र समदर्शनः, मिलने की जो अनुभूति है समान हो गया, जैसे नदी सागर के साथ मिल करके एक हो गई। समस्त साधनाएं इसी एकत्व अनुभूति में पहुंचने के लिए ही है। तो लेकिन ये एकत्व की अनुभूति के लिए आकार और तत्व, मिट्टी और मिट्टी में जिस आकार के कारण वो घट शब्द से हम कहते हैं वो आकार, दोनों को अलग करके समझना पड़ेगा। तो ये सारे विश्व की जो सत्ता है, ये सत्ता खंड खंड प्रतीत हो रही है, लेकिन प्रत्येक खंड सत्ता अखंड अनंत सत्ता का ही एक विशेष रूप है। जैसे घट के रूप में प्रतीत होने वाला असल में मिट्टी है, किसी भी पदार्थ को आप देख लो, ये पदार्थ अंततः अपने आप में तो पूर्ण नहीं है, वो उसके कारण से बने हैं। जैसे वस्त्र ले लो, वस्त्र अपने आप में तो पूरा नहीं है, धागों से बने हैं, धागे अपने आप में पूरे नहीं है, रेशों से बने हैं, रेशे अपने आप से पूरे नहीं है, कण से बने हैं, छोटे छोटे कण से, कण अपने आप में पूरे नहीं है, वो एक अनंत शक्ति चाहे एनर्जी कहो, उस अनंत सत्ता का एक वेव है, ए लिटिल स्पेक ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक छोटा सा बूंद का नाम है पार्टिकल, अणु परमाणु जिसको बोलते हो। तो समझ लो कि ये जो सारी चीजें आपको दिख रहा है ना, जब आप उस वस्तु सत्ता की सच्चाई को आप समझने की कोशिश करोगे तो उसके कारण के भीतर में जाओगे। ये बौद्धिक दिशा से बात कर रहा हूं, तो जैसे समुद्र में बहुत सारे तरंग आते रहते हैं और विलीन होता रहता है, इसी प्रकार ये समस्त सत्ता, खंड खंड सत्ता, उस अनंत सत्ता में सत्ता के लहरें हैं। ये सारा विश्व, आकाश भी अस्थि ना है ना, तो इसलिए वो भी सत्ता का एक विशेष रूप है। तो देखो, सत्ता ही प्रत्येक वस्तु के मूल उपादान है, जिसको आप सत चित आनंद कहते हो ना। ये सत क्या है? सत माने अस्तित्व है को हम लोग गंभीरता से नहीं मानते, लेकिन जैसे मिट्टी का बनाया हुआ हो घड़ा, तो ये मृद घट आप कहोगे, मिट्टी के घड़े हैं। सोने का बना होगा तो स्वर्ण घट बोलोगे, ठीक है ना, दिखेगा भी, अनुभव भी होगा। तो इसी प्रकार ये समस्त जो नाम रूप हैं, खंड खंड, तो ये खंड पदार्थ किसके खंड हैं, किसके टुकड़े हैं? जैसे शक्कर का खंड होता है ना, मिश्री के नाना आकार के होते हैं, लेकिन टुकड़े तो शक्कर का ही होता है ना, तो कैसे भी आकार प्रकार हो उसमें क्या मिलेगा? मीठा मिलेगा। तो इसी प्रकार कैसा भी आकार प्रकार हो इस विश्व का, लेकिन सबके सब आपको सदरूप से अनुभव में आ रहा है कि नहीं? तो सत ये इस समस्त विश्व का मूल उपादान है। सत आकाश भी सत में एक विशेष आकार बना, इसलिए वो विशेष दिखता है, लेकिन है वो भी सत। तो आकार और उपादान, कार्य और कारण, इनको विवेक करके पहचानना, ये ही आपको उस अद्वैत अनुभूति की ओर ले जाएगा। एक बार फिर घट का दृष्टांत ले लो। मिट्टी कुंभकार ने बनाया नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से युक्त मिट्टी, वजन से युक्त मिट्टी पहले से है। कुंभकार ने मिट्टी को एक खास आकार में रूपायित किया, और वो जो सामने हमारे हैं उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध वजन आदि वही धर्म दिखता है, और मिट्टी भी दिखता है। तो कुंभकार ने क्या बनाया भैया? उसमें कुंभकार का मेहनत से क्या बना? आकार बना, लेकिन क्या आकार में रूप है? मिट्टी तो बनाया नहीं ना, तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब तो पहले से ही था। अब आकार में रूप है, आकार में स्पर्श है, आकार में वजन है आकार में नहीं है। तो आकार जो बना है, जिसको बना है वो, जिसने कुंभकार ने जिसको बनाया है, वो आकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध और गुरुत्व माने वजन, इन सब से रहित है, लेकिन इन सब से युक्त मालूम पड़ता है। युक्त नहीं है, युक्त तो मिट्टी है, लेकिन जैसे सुवर्ण से बना हुआ कंगन होगा तो सोने का धर्म सारे हम उस कंगन में देखेंगे, लेकिन धर्म तो सोने में ही होगा ना। तभी तो वजन भी देख लो ना, नाप करके देख लो, अगर उस आकार का पृथक वजन है और सोने का पृथक वजन है तो डबल हो जाना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कई बार आपको शायद सुनाया है कि एक रुमाल लेकर, एक कुछ धागे लेकर के आप गए बुनकर के पास, भैया हमको कपड़ा बना दो, ये आधा किलो है। तो जो बनेगा वो कितना बनेगा? महाराज आधा किलो बना देंगे। अच्छा ठीक है, आधा किलो बना देना तुम। तो अब जब लेने आया तो उसने दिया, उसने कहा नापिए, तो आधा किलो। अरे भैया आधा किलो तो मैंने दिया और आधा किलो आपने बनाया, तो एक किलो का होना चाहिए कि नहीं? धागे का वजन आधा किलो और वस्त्र का वजन आधा किलो, तो एक किलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसने कहा महाराज एक किलो कैसे मिलेगा, आधा किलो धागा है तो वस्त्र भी आधा किलो का होगा। अरे भैया आधा किलो तो पहले से हमने दिया आपको, आपने जो बनाया वो उसका वजन कहां गया? तो इसका मतलब है कि अगर कुछ बना भी है उसका कोई वजन, लेकिन हम लोग समझते कपड़े का वजन कितना? आधा किलो। असल में धागे के वजन को हमने कपड़े में आरोप कर दिया, आकार में आरोप कर दिया। इस प्रकार धागे लाल होंगे तो कपड़े भी, असल में धागे का लाल रूप को हमने कपड़े में आरोप कर दिया। इसी प्रकार धागों का अस्तित्व, मिट्टी का है मिट्टी, उसके सत्ता को हमने उस आकार में आरोप कर दिया, वस्तुतः उस आकार की सत्ता नहीं है, आकार की सत्ता नहीं है। तो एक विचित्र बात देखिए, आप आपके सामने जो घट आप कह रहे हो वहां पर मिट्टी तो है ही, और कुंभकार ने जो बनाया, जो बनी हुई जो वस्तु है आकार, वो दोनों है, ठीक है ना, मिट्टी भी है और आकार भी है। लेकिन हम लोग दो नहीं समझते हैं, कारण को और कार्य को मिला करके एक पदार्थ समझते हैं। असल में तो एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ है नहीं, क्योंकि कारण तो कुंभकर्ण ने बनाया नहीं, वो तो पहले से ही था। तो जो पहले से ही था और जो पहले नहीं था अब है, इन दोनों को पृथक करके पहचान करना आवश्यक है। ये कार्य कारण का विवेक कहा जाता है, आकार और उपादान का विवेचन। तो अब देखिए, ये समस्त विश्व जो आप देख रहे हो, इसमें भी दो चीज आप देख रहे हो, एक उपादान और एक आकार। एक जो उसके कंटेंट है, मटेरियल है, और एक फॉर्म। तो लेकिन ये दो हैं ऐसा पहचान हमको नहीं है। तो सब जो आकार, नाना आकारों से युक्त सत्ता, मिट्टी के समान, जैसे मिट्टी घड़े के भीतर आकार लिया, इसी प्रकार एक अखंड सत्ता मैं, आप, आकाश, जगत सब रूप में आकार लिया हुआ है। और घड़े और इसमें अंतर ये है, मिट्टी स्वयं आकार ले नहीं सकते अकेले, उसको कुंभकार की सहायता चाहिए। लेकिन ये जिस सत्ता की बात हम कर रहे हैं उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, सत्ता से भिन्न कोई असत होगा तो वो क्या सहारा देगा। तो ये जो सद वस्तु हैं, ये समस्त शक्ति से संपन्न हैं और स्वयं इतने आकार ले लेते हैं। तदैक्षत बहुश्यम प्रजाय, सत ने संकल्प किया और सब रूप ले लिए महाराज। तो अब हमारा काम है कि आकार को अलग समझे और आकार जिसने लिया है उस तत्व को अलग समझे। अगर उस तत्व को हम पहचान लिए तो सर्वत्र समदर्शन हो जाएगा। ये जो सब सत्ता समस्त नाम रूप एक का ही है, इस अनुभव में हम पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम इस अनुभव में पहुंच जाएंगे तो हमारे सब प्रकार के शोक की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि उस मूल सत्ता की कभी उसका नाश नहीं होता है ना। तो एक तो मैं नाम का जो पदार्थ है और मैं के सामने यह नाम का जो पदार्थ पड़ा है अहम इदम, ये मैं भी दो चीज है, एक तो आकार और एक मूल सत्ता मूल चीज है। अब इस दोनों को भी हम एक करके बैठे हुए हैं, आकार को और सत्ता को। तो यहां पर जैसे ही आप दोनों हैं, माने मैं के भीतर दोनों चीज है, आप अपने आप को कार्य मानते हो कि कारण मानते हो, पैदा हुआ हूं ऐसा समझते हो कि नहीं, अज हूं अविनाशी हूं ऐसा समझते हो। गड़बड़ी समझ में आ रही है? हाँ। तो अगर मेरा जन्म हुआ है ये समझ रहा हूं तो जन्म तो आकार का हुआ भैया। जन्म किसका होता है? और जो जन्म नहीं लिया, जिस पर आकार दिख रहा है उसका खबर है? और जब तक उसका खबर नहीं है तब तक दुख से बचोगे कैसे भैया? अगर जन्मे हो तो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु का डर तो रहेगा। तो यहां पर मैंने इस अहम अनुभव में साधक को बड़ा भारी काम है भैया। इस मैं के भीतर जो दो चीज इकट्ठी अविवेक अविविक्त होकर के मिश्रित होकर के प्रतीत हो रहा है ना, इसमें से एक चीज है खरा सोना इसी के भीतर, और एक चीज है आकार जो निरंतर बदल रहा है। तो न बदलने वाली चीज और बदलने वाली चीज, इस दोनों को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और महाराज इसको अलग करने के लिए ही दृक दृश्य का विवेक किया जाता है। और हम लोगों को असल में रूप में आकार में इतना मोह है, मोह बड़ा है, और आकार जिसने लिया है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं देखो दूसरे श्लोक में कि जिसने ये देख लिया आकार के आवरण को हटा करके, जिसने उस आत्म तत्व को देख लिया, उसका फल सुनिए। यो मं पश्यति सर्वत्र, यो मं पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो सबकी आत्मा मैं हूं, माने वो आत्मा जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, वो आत्मा ही मैं हूं, सबकी आत्मा वही तो ईश्वर है। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मेरे में ही देखता है, माने मेरे से अभिन्न जानता है, मेरी सत्ता से भिन्न नहीं है जानता है, तस्य ऐसे देखने वाले, ऐसे अनुभव करने वाले को अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। और सच में न प्रणश्यति, और मेरे लिए उसका भी कभी नाश नहीं होता। माने वो जानता है कि परमात्मा सदा अविनाशी है, विद्यमान है, और परमात्मा जानता है कि ये भी सदा विद्यमान है। असल में वो तो एक ही है ना, एक एकत्व दर्शन की बात कही। अच्छा, प्रणश्यति शब्द का संस्कृत की दृष्टि से जो अर्थ है वो है कि ओझल हो जाना, जैसे सप्रणष्ट है, माने वो भाग गया, दूर चला गया। तो जो सर्वत्र मुझे देखता है उसके लिए मैं तो छुप नहीं सकता कहीं, मैं तो कहीं उनके आंखों से ओझल हो नहीं सकता हूं। तो तस्या हंग न प्रणश्यामी, भैया वो तो 24 घंटा मुझे देखता रहता है, मैं छुप नहीं सकता। और सच में न प्रणश्यति, और वो भी मैं अपने आंखों से उसको भी कहीं जाने, मैं भी निरंतर उनको देखता रहता हूं। अच्छा, कभी आपने ख्याल किया कि 24 घंटा कोई आपको देखता रहे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अच्छा लगेगा अगर बहुत प्रेम होगा तो। 24 घंटा देखते देखते बोर न हो, इसका मतलब है कि इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है महाराज। तो इसलिए इन दोनों का भगवान आगे चल करके 7वें अध्याय में खूब बताएंगे इसके बारे में कि ज्ञानी जैसा कोई प्रिय मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरी आत्मा है और मैं उसकी आत्मा हूं। तो ये जो आत्मा आत्मसत्ता से परमात्मा सत्ता से एकत्व की अनुभूति है, वो एकत्व की अनुभूति क्या है? आकार का घोंघट हटा करके आपने उसको पहचान लिया, मूल सत्ता को। इस मैं के भीतर जो एक और बैठा हुआ है ना, उसको जान लिया, जो कि अविनाशी है। एक छोटा सा दृष्टांत तो बोल करके पूरा करता हूं, जिससे ये बात बैठ जाए। वैसे दृष्टांत तो शायद आपको सुनाया होगा, एक तरंग की कथा। समुद्र में एक तरंग नाश्ता हुआ, रोल कर रहा था, नाश्ता गाता, सुबह का समय था, बड़ा मस्त था वो तरंग। एकाएक झोंका आया और सर उठा करके देखा तो बड़ा घबराया। क्या देखा उसने कि एकदम सामने जो तरंगों की श्रेणी है सब एक साथ में जाकर के कूदा, कहां पर? बेला भूमि पर, रेता में। बड़े जोर से कूदा, बड़ा शोर हुआ और सब चुरचुर हो गया। बड़ा घबराया वो, ये क्या हो रहा है। तब तक देखता है कि उसके पीछे जो दूसरी पीढ़ी थी, दूसरी जेनरेशन, वो भी कूदा, टकराया और वो भी खत्म। अरे, तब तक उसको ये रियलाइज हुआ मैं भी उधर ही जा रहा हूं। उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कोई और रास्ता हो, चारा हो तो बताओ भैया, हमको भी बता देना। बिना टकराए, बिना चुरचुर हुए। तो जैसे उसको ये रियलाइज हुआ वो घबराया, आंख बंद कर लिए। पहले तो कोशिश किए कि किसी तरह मैं अपने आप को बैकयार्ड में है ना, बूढ़े ना बनूं, जवान और बल्कि और पीछे चला जाऊं तो और मजा है। लेकिन कहां होता है, वो तो सारे फोर्स उसको आगे धकेल रहे हैं। अब निश्चित हो गया कि महाराज अब तो मैं मरूंगा, मेरा भी यही दशा हो जाएगी। ओहो, बड़े विषादग्रस्त हो गए, मुरझा गए, समस्त नाचना गाना सब भूल गया दुख से। उसके साथ ही तरंग वो भी नाच रहा था, बड़े आनंद से गीत गा रहा था। पूछा कि मित्र क्या हुआ, अभी तो तुम बड़े झूम रहे थे। कहा कि पूछो नहीं, अगर पूछोगे तो तुम्हारा भी नाचना गाना सब खत्म। कहा कि बताओ तो सही। बोले देखो। अरे क्या देखूं? कहा कि देखो ये सब क्या हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है कहां? तो उसने भी देखा, उसने कहा क्या हुआ, कुछ तो देखा ही नहीं पड़ रहा है। बोले भैया हमारी सबकी दशा जो है ऐसे ही चुर चुर हो जाएंगे और फिर हम रहेंगे नहीं और बिल्कुल खत्म माने शून्य है। अपने आत्मसत्ता का न रहना ऐसा सोचते ही एकदम दिल बैठ जाता है कि मैं नहीं रहूंगी। तो मित्र ने कहा, उसके दोस्त ने, अरे पगले ठीक से देख। बोले क्या देखूं? देखो ठीक से। अरे सब खत्म हो रहा है ये तो देख रहा हूं। बोले नहीं देख रहे हो तुम, यू आर नॉट ए लिटिल वेव, तुम लहर नहीं हो, यू आर द इटर्नल पार्ट ऑफ दिस ओशन, तुम तो जल हो और जल कभी नष्ट नहीं होता। एक बूंद जल भी अगर समुद्र का एक बूंद खो जाए कहीं तो हजारों लाखों साल में समुद्र खो जाएगा कि नहीं? नहीं खोता है। तो जल का नाश नहीं होता है, नाश किसका होता है? तरंग का भी। तरंग में दो चीज है, जल और आकार। केवल आकार का नाश होता है जल का। और जब तक हम अपने आप को आकार समझते रहेंगे तब तक हमारा मृत्यु भय जाएगा नहीं, हम मरेंगे। और जिस दिन ये डिस्कवर कर लेंगे कि हम आकार नहीं हैं, हम तो जल हैं, हम तो अनंत सत्ता समुद्र का ही एक अंश है अथवा वो सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, तो इसको जैसे ही आविष्कार कर लेते हैं तो आप सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को बड़ी ईमानदारी से ये विवेक कर लेना चाहिए कि ये जो मैं जन्मा और मरा, ये इस अनुभूति में, इस मैं में सचमुच कौन जन्मता है मरता है और कौन जन्मता मरता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान योगेन सा, ध्यान योगेन सा, ध्यान योगेन सा। ओम तत्सत्।